ओम शांति। तो आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी हम सबके समक्ष पहुंचे हैं, उनका हम बहुत करतल ध्वनि के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। योग की यथार्थ विधि का संदेश लेकर आए हैं, सिद्धि के दिव्य अनुभव का प्रकाश जगाए हैं, सरलता सेवा स्नेह का अनुपम परिचय है। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी ज्ञान के सच्चे दीपक हैं। ऐसे आत्म प्रकाश भाई जी आज हमें एक ऐसे महान व्यक्तित्व का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की आध्यात्मिक सेवा में समर्पित किया है। हमारे बीच पधारे हैं आत्म प्रकाश भाई जी। आपने यह ईश्वरीय ज्ञान सन 1972 में नागपुर से प्राप्त किया। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से 1973 में एमएससी की डिग्री स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त की। इसके पश्चात आपने अपने जीवन को परमात्मा सेवा के लिए अर्पण करते हुए सन 1976 में माउंट आबू मुख्यालय में ईश्वरीय सेवा हेतु स्वयं को समर्पित कर दिया। आपने भारत के साथ विश्व के अनेक देशों में जाकर परमात्मा ज्ञान से हजारों आत्माओं को लाभान्वित किया। वर्तमान में आप युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आपकी क्लास का विषय है योग की यथार्थ विधि और सिद्धि। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी,
ओम शांति। योग की यथार्थ विधि और सिद्धि, प्यारे बाबा, हम सभी बच्चों को मनुष्य से देवता बनने के लिए विशेष चार सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। इन चारों सब्जेक्ट में हमारा मुख्य सब्जेक्ट है योग का। योगी आत्माएं इस यूनिवर्सिटी के टॉपर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, चैंपियंस होंगे। तो योगाभ्यास हम सभी करते हैं, लेकिन एक बात हमें जानना जरूरी है। बाबा हर मुरली में दोहराते हैं एक बात कि मुझे याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। क्यों बाबा ये बात बार बार दोहराते हैं, इसके पीछे क्या राज है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस संसार में हमारा सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला केवल एक ही बाबा हैं, और वो चाहते हैं मेरा हरेक बच्चा, मेरा हरेक लाल शक्तियों के खजाने से माला माल हो जाए। तो बाबा को ही हमें क्यों याद करना है, उसके पीछे गहरा राज ये है कि इस संसार में केवल एक परमात्मा ही आध्यात्मिक शक्तियों के सोर्स हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के पावर हाउस हैं, और कोई भी नहीं है। और ये दुनिया में ये सिद्धांत प्रसिद्ध हैं energy is always flowing from higher point to lower point. शक्तियों का प्रवाह हाइयर पॉइंट से लोअर पॉइंट के तरफ स्वतः ही होता है. जब हम सर्वशक्तिवान बाप को याद करते हैं तो शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, शक्तियां जमा होने लगती हैं. लेकिन किसी भी व्यक्ति या वैभव को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं, तो शक्तियां हमारी खर्च होती है. क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को याद करते हैं उसके प्रति हमारा व्यर्थ चिंतन चलता है, नकारात्मक चिंतन चलता है. मान लीजिए कभी सकारात्मक भी चिंतन चले फिर भी संकल्पों के माध्यम से आत्मा की ऊर्जा खर्च होती है, नष्ट होती है. इसलिए बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों के पास शक्तियों का खजाना भरपूर हो. एक बार जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि ऐसा कल्याण चाहने वाला हमारा एक ही प्यारा बाबा है ना भाई. अभी हम योग के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहेंगे. इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं, जो भगवान को प्राप्त करते हैं वो भाग्यशाली आत्माएं हैं. लेकिन उन्हों में से भी जो योगी भाव का वरदान पाने में सफल होते हैं उन्हों को पद्मा पद्म भाग्यशाली कहते हैं. क्योंकि वो अपने भाग्य को पद्म गुना चमकाते हैं, पढ़ाते हैं. योगी आत्मा इस संसार में सबसे भाग्यशाली हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है. वो परमात्मा के नैनों का नूर बनते हैं, भगवान के नैनों के पलकों में सदा पलते रहते हैं. ये भाग्य केवल योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा योगी आत्माओं के नयनों में सदा नूर बनकर समाया रहता है. दूसरी बात, योगी आत्माएं इस संसार में सबसे बुद्धिमान आत्माएं कहलाती हैं. चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान पंडित फिलोसोफर हो, इन सबसे बढ़कर बुद्धिमान आत्माएं हैं योगी आत्माएं. आप कहेंगे कैसे? पहली बात ये है कि वो चतुर सुजान बाप के चतुर बच्चे होते हैं. माया दुश्मन के राज में रहकर अपने मन और बुद्धि को माया दुश्मन के वार से सदा बचा कर रखते हैं, ये चतुराई उनके पास होती है. और दुश्मन से कभी भी धोखा नहीं खाते हैं. और दूसरी बात, वो अपने मन और बुद्धि को परम धाम में हर पल हर घड़ी परमात्मा से जोड़कर रखते हैं और हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करते रहते हैं. अविनाशी कमाई जो साथ में चलने वाली है उस कमाई में अपना समय सफल करते हैं. ये बुद्धिमानी उनके पास होती है, इसलिए वो सबसे बुद्धिमान आत्माएं संसार में कहलाते हैं. आपने देखा होगा जितनी महिमा शास्त्रों में परमात्मा की गई है, योगियों के महिमाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं. क्यों? क्योंकि योगी आत्माएं भगवान के राइट हैंड्स होते हैं, भगवान के विशेष इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो परमात्मा से खजाने लेकर सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहते हैं। मास्टर पालनहार का पार्ट वो बजाते हैं, इसलिए मास्टर भगवान का टाइटल भी उनको मिलता है। ऐसे योगी आत्माएं भाग्यशाली कहलाते हैं। अभी वरदानों के सागर बाबा हमें मिले हैं, अनेक वरदान हमारे बच्चों पर लुटाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वरदान है योगी भव का वरदान। कहते हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं, तो योगी भाव का वरदान जिनको प्राप्त होता है उनको अन्य सभी वरदान स्वतः ही मिलते जाते हैं। इसलिए संगम योग पर हमने योगी भाव का वरदान लेकर ही रहना है, ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा हो। अभी ऐसा श्रेष्ठ वरदान सहज पाने के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि ब्राह्मण संसार से एक ही आवाज सदा सुनाई देती है, योग हमें कठिन अनुभव होता है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में योग सदा सरल और सहज हो उसका राज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसी सुंदर अनुभूति योग की हम करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है, बाबा कहते हैं आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना आत्मा का अनुभव सहज निरंतर नेचुरल अनुभव होता है उतना बाबा की याद सहज नेचुरल और निरंतर होती है। लेकिन आत्मा का अभ्यास हमें विधि पूर्वक करना होगा, केवल आत्मा आत्मा रटने से ही कुछ नहीं होगा। विधि बड़ी सरल है, आत्मा का अनुभव करने के लिए सबसे पहले आत्मा को देखना होगा, खुद को देखेंगे तो खुदा को देख सकेंगे, खुद की याद होगी तो खुदा की याद स्वतः ही आएगी। इसलिए एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र से भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा देखना है। दिव्य नेत्र की ज्योति इतनी प्रखर हो जो हमारे इस असली स्वरूप का दर्शन साक्षात्कार हमें बहुत स्पष्ट हो कि मैं हूं देह से न्यारा केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, मेरा इस संसार में मूल अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु के रूप में ही है। कहते हैं जब समझते हैं बिंदु तो याद आता है सिंधु, अर्थात सागर बाबा स्वतः याद आने लगता है, लेकिन स्वयं को बिंदु देखना है और उसमें हमें स्थित रहना है। तो देखने के साथ आत्मा के जो भी निजी गुण साथ हैं, उन सातों गुणों का एक के बाद एक बहुत सुंदर अनुभव हमें करते रहना है। तो धीरे धीरे आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो आभा मंडल है, वो दिव्य और भव्य बनता जाएगा। कहते हैं जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है, जितना आत्मा का प्रकाश प्रखर होगा तो हमारी उपस्थिति जहां होगी वहां वो प्रकाश अपना प्रभाव स्वतः ही डालता जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठकर इस अभ्यास को हमें पक्का करना है, और जब भी हम व्यवहार में आते हैं सारे दिन भर में, हमने एक बात पक्की करनी है कि जिसको भी हम देखते हैं उसके भ्रुकुटी में मैंने चमकता हुआ सितारा देखना ही है। सितारा माना तारा देखना, सबके भ्रुकुटी में चमकता हुआ तारा दिखाई देना, ये है दिव्यता की शक्ति बढ़ना। किसी को पूछते हैं कितने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, बड़े नशे से कहते हैं 25 साल से 20 साल से चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। लेकिन जितने हम पुराने होते जाते हैं उतनी हमारी दिव्यता की शक्ति, रूहानियत की शक्ति, अलौकिकता की शक्ति बढ़ती रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। ये साधारण देह के बजाय दिव्य स्वरूप हमें स्पष्ट नजर आए, ऐसी सुंदर अनुभूति हमें करना है। ब्रह्मा बाबा ने इसका इतना अभ्यास किया था तो बाबा की दृष्टि को एक्सरे विजन कहते थे। एक्सरे जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे शरीर के होते हैं उसका हमें फोटो निकाल कर देता है। तो ऐसे एक्सरे विजन अर्थात भ्रुकुटी के अंदर छिपी हुई जो आत्मा है वो हमें स्पष्ट नजर आए और स्पष्ट अनुभव हो, उसको कहते हैं पारदर्शी दृष्टि। तो ये अभ्यास की बात है। अभ्यास करते 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 हमने इसको बहुत पक्का करना है। लेकिन होता क्या है, हम थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं 2-5 साल, हमें जो समय और शक्ति का खजाना बाबा ने दिया है वो हम और बातों में ही खर्च करते हैं, आत्मा के अभ्यास पर इतना नहीं ध्यान देते हैं। इसलिए आगे चलते जाते हैं और लड़खड़ाते रहते हैं, योग कठिन लगता है। तो हमें हर रोज इस आत्मा के पाठ को मालिश पॉलिश करते जाना है, और उसके लिए बहुत सुंदर एक प्रयोग डेली अगर करेंगे तो गारंटी है आपकी आत्मिक स्थिति निखरती जाएगी। वो बहुत सुंदर प्रयोग कौन सा है, अमृत वेले जैसे आंख खुलती है बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, और ऐसा अनुभव करना है कि बाप दादा फरिश्ता स्वरूप में मेरे पास खड़े हैं, और निराकारी बाप मुझे निराकारी आत्मा का तिलक लगा रहे हैं और आत्म अभिमानी भाव का वरदान भी दे रहे हैं। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ, बहुत प्यारी बच्ची हूँ, तो बाबा उस निराकारी तिलक पर विजय का तिलक भी लगा रहे हैं और विजयी भाव का वरदान दे रहे। जोरदार बात, ताली बजाओ ना जरा। देखो बाबा हमें विजय का तिलक अमृत वेले ही लगाते हैं, परिणाम स्वरूप सारे दिन भर में विजय का नशा और विजय की स्थिति हमें स्वतः ही अनुभव होने लगती है। अभी आत्मा का अभ्यास बहुत रुचि से करना अगर चाहते हैं तो उसका एक सीक्रेट है। ज्योति बिंदु क्या बिंदु बिंदु लगा के बैठे हैं, 1-2 घंटे के बाद बोर होने लगता है। लेकिन हमारी दादियों ने इतने वर्षों तक आत्मा का अभ्यास किया, कभी भी उनके मुख से हमने नहीं सुना कि आत्मा का अभ्यास हमें बोर होता है। हम छोटी सी भूल करते हैं, मैं आत्मा हूँ ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन किस प्रकार की आत्मा हूँ ये हम भूल जाते हैं। करोड़ों में सिलेक्शन की हुई हर एक आत्मा इस सभा में बैठी है, लाखों में भी नहीं करोड़ों में एक एक सिलेक्शन बाबा ने किया है। ऐसी महान आत्माओं की ये सभा यहाँ बैठी है। कितनी महान आत्माएं हैं, सारा संसार जिसके गुणगान गाता है, वो भगवान हमारे गुणगान हर रोज मुरली में गाते थकता ही नहीं है। कितने भाग्यशाली हम बच्चे हैं, सोचो तो सही जरा। दुनिया उसके गुणगान कर रही है और वो हमारा गुणगान करता है, कितने भाग्यशाली है भाई, बोलो ना। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें ये फील करना है, सारी दुनिया को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता मेरा बाप है, किसी और का नहीं, मेरा बाप है। ऐसे ही नशे में हमें सदा मस्त रहना है, ये वास्तविकता है। तो बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि बाबा बच्चों को समान के सीट पर सेट करते हैं और माया उतार देती है, अपसेट करती है। बाबा सेट करते हैं, सेट क्यों करते हैं बाबा, क्योंकि मेरा हर बच्चा सेठ बन जाए, माला माल बन जाए, खजानों से भरपूर बन जाए, इसलिए बाबा सेट करते हैं। सचमुच इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद बहुत ऊंची स्थिति बनाने के सपने अगर हम देखते हैं, तो उसका राज ये है कि समान के सिंहासन पर हमें डटे रहना है। कुछ भी हो जाए, उस सिंहासन को हमने छोड़ना नहीं है। कई बार हम देखते हैं कोई हमारी महिमा करता है तो हम बहुत खुशी में झूमने लगते हैं, और कोई थोड़ी सी ग्लानी करता है हमारा चेहरा मुरझा जाता है। हम कोई कठपुतली नहीं है किसी के हाथ की, हमें अपना सम्मान है। भगवान ने बड़े बड़े टाइटलों से हमें नवाजा है, इसलिए उस टाइटल रूपी टाई को पहन कर ही हमने सेवा के क्षेत्र में उतरना है। इसलिए समानधारी अर्थात समान के टाइटल को धारण करना, जीवन का अंग अनुभव करना, ये अभ्यास करेंगे तो आपके चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक और आंखों में फलक दिखाई देगी। देखने वाले हैरान होते जाएंगे कि पता नहीं इनको क्या मिला है, इतना खुशी में झूम रहे हैं। भाई भगवान सबसे बड़ी लॉटरी हमें मिली है। भाई किसी ने 20 लाख 10 लाख देखा नहीं, उसकी 25 लाख की लॉटरी लग जाती है, दूसरे दिन अखबार में आता है वो तो चला गया। इतनी खुशी हुई है, उसको हजम ही नहीं कर सका। हमें सबसे बड़ी लॉटरी भगवान की प्राप्ति मिली है, उससे बड़ी लॉटरी दुनिया में है ही नहीं। ऐसी लॉटरी हमें मिली है, कितने भाग्यशाली हम आत्माएं हैं, आप सोचो तो सही जरा। इसलिए हमें समान में मस्त रहना है। प्रकाशमणि दादी जी ने जाते जाते कहा था, अगर दादी जैसा बनना चाहते हो तो शब्दों को प्रयोग में लाओ, जीवन में धारण करो। सम्मान में रहना है, सबको सम्मान देना है, दादी जैसा महान बन जाओगे। तो सम्मान में रहना है अर्थात स्वयं की स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना है। कोई मान दे न दे मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं भिखारी नहीं हूं, भगवान ने बहुत मान मुझे दिया है। इसलिए स्वयं ही स्वयं को मान देकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाना है, तो ऑटोमेटिक दूसरे हमें मान देते रहेंगे। तो देह से न्यारा होने से हम इस बंधनों से फ्री होते हैं। बाद में यहाँ से ऊपर जाना है तो वो काम कौन करता है, ईश्वरीय नशा। कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। घटिया दुनिया, क्या रखा क्या है इसमें, 5000 वर्ष तो हमने यूज किया है इसमें, कोई सार नहीं है, सार संसार है, कोई रस नहीं है, नीरस दुनिया है, सर्व रसों का भंडार हमें बाबा मिला हुआ है। इसलिए इस दुनिया से उपराम रहेंगे तो ऊपर वाला राम की याद सतही आएगी। इसलिए हमें नशे में झूमते रहना है, मस्ती में मस्त रहना है, तो ऑटोमेटिक बुद्धि हमारी ऊपर जाएगी, हल्की फुल्की बनकर परम धाम में बाबा के पास बिठा देगी। यथार्थ याद किसको कहते हैं? 100% परफेक्ट याद अर्थात जब ईश्वरीय नशे की अनुभूति में हम रहते हैं तो परमात्म मिलन का मजा ही कुछ और आता है। आप देखना शिवरात्रि के दिन जब बाबा सामने आएंगे आपके, जब आप नशे में होंगे मस्ती में होंगे तो मिलन का आनंद ही, अनुभव ही कुछ अनोखा होगा, बढ़कर चढ़कर होगा। इसलिए अभी से ही समान में स्थित रहने का अभ्यास आपको करना है, पूर्व तैयारी परमात्मा मिलन की अभी से ही करना है, तो ईश्वरीय नशे की अनुभूति को हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। तीसरी बात, यथार्थ याद अर्थात परम धाम में बाबा ज्ञान सूर्य बैठे हैं, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य के स्थिति में बैठी हूँ, मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा को देख रहा है और मन मेरा मन मना भव का मंत्र का जाप कर रहा है, इसको कहते हैं यथार्थ याद। अगर ऐसी यथार्थ रीति से याद करेंगे तो सिद्धियां अर्थात योगाभ्यास में शक्तियां बहुत अच्छी तरह से आपको अनुभव होती जाएगी। अभी हमें परम धाम में बाबा के पास लंबे समय तक बैठना है तो उसके लिए क्या करना जरूरी है, क्योंकि प्यार एक ऐसी दुनिया की चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने की नहीं लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार हमें कराता है। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन बाबा के प्रति प्यार बढ़ाते रहना जरूरी है। आप कहेंगे भाई हमारा प्यार तो बाबा से है ही, इसलिए यहां बैठे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहां गिरा कोई कहां गिरा, ये हमारी हालत हुई है। बाबा से प्यार जरूर है लेकिन कुछ प्यार का परसेंटेज किसी देहधारी से जुड़ा है, व्यक्ति से जुड़ा है, वैभव से जुड़ा है, संबंधियों से जुड़ा हुआ है। तो जो बिखरा हुआ प्यार है उसको हमें बटोरना है और एक ठिकाने पर फोकस करना है। तो प्यार जितना बढ़ता जाएगा उतने सुंदर अनुभव हमें परमात्म मिलन में होते जाएंगे। तो 100% प्यार बाबा के साथ हो तो उसके लिए हमें चेक करना है, कोई ऐसा स्थान तो नहीं है, कोई ऐसी व्यक्ति तो नहीं है, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। उसको चेक करना है और वहां से बुद्धि को चेंज करना है, बाबा के तरफ ट्रांसफर करना है। ये चेकिंग और चेंजिंग का अभ्यास हमारा बढ़ता रहे तो धीरे धीरे बाबा से प्यार भी हमारा बढ़ता जाएगा। जैसा दादियों का बाबा से प्यार था, जिगरी प्यार, हड्डी प्यार, ऐसा प्यार हमारा बाबा से होगा तो योग हमें बहुत निरंतर अनुभव होता जाएगा। लगातार लगी है तार, क्योंकि जहां प्यार वहां तार जुड़ जाती हैं। जैसा प्यार वैसे बुद्धि की तार हमेशा जुटी रहती हैं। तो हमारा इस दुनिया में है कौन भाई, जीवन साथी हमने बाबा को बनाया है, प्यार का सौदा उसके साथ किया हुआ है। इसलिए इस संसार में रहते हुए एक बाबा को ही अपना संसार अनुभव करते रहे, दिल में रहे एक बाबा से प्रीत, दिल में रहे एक बाबा से प्रीत और निभाते रहे संसार की रीत। संसार में रहना है, संसार की रीति रसम निभाते जाना है, लेकिन अंदर का प्यार, जिगरी प्यार केवल एक बाबा के साथ हमें अनुभव करना है। प्यार के सागर के बच्चे हैं, सबके साथ प्यार से रहना है, लेकिन न्यारे और प्यारे होकर रहना है, जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे सामने उदाहरण के रूप में रहे हैं, ऐसा हमने प्रैक्टिकल अनुभव करना है। अभी सचमुच आप योगाभ्यास की गहराई को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। 50 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं मन बुद्धि के बारे में 5 बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उन 5 बातों को अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे, प्रैक्टिकल में लाएंगे तो गारंटी है योग का ग्राफ आपका ऊंचा ही जाएगा, नीचे कभी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मन और बुद्धि या आत्मा रूपी माँ के दो बच्चे हैं। ये द्वापर युग से माया के संग में रहकर रंग उनका बदल गया और जो भी आत्मा के पास खजाने थे सारे लुटा दिए, आत्मा को कंगाल बना दिया, मोह का ताज पहना दिया, मोहताज बना दिया। अभी इन्हीं पांचों बारों मन बुद्धि के बारे में पांच बातें जानने के लिए, पहली बात है मन और बुद्धि हमारी कैसी हो। मन हमारा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो, ऐसा मन मन मना भव का अजापा जाप करता जाएगा, कभी थकेगा नहीं। बुद्धि हमारी कैसी हो, बुद्धि एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो, क्योंकि इस योग में अहम भूमिका मेजर रोल बुद्धि का होता है। इसलिए इस योग का नाम राजयोग और दूसरा है बुद्धि योग। इसलिए बुद्धि कैसी हो, एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो, ऐसी बुद्धि बाबा के साथ निरंतर लगी रहेगी और कनेक्शन जुटाकर रखने में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। दूसरी बात, मन बुद्धि के बारे में हमारे सामने क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये शक्ति बुद्धि है, ये शक्ति मन है, ये क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। बुद्धि के पांच काम हैं, मन का केवल एक काम है सोचना। बुद्धि का पहला काम है देखना, आत्मा की आंख बुद्धि कहलाती है। दूसरा काम है जजमेंट लेना, हमेशा निर्णय शक्ति बुद्धि लेती है। तीसरा काम है मेमोरी पावर, बुद्धि को ही कहते हैं। बहुत 20 साल पुराने बात हम किसी को बताते हैं, वो कहां हम छिपा कर रखते हैं, बुद्धि रूपी मेमोरी में। और चौथा बुद्धि का काम है, बाबा कहते दिल से मुझे याद करो। भाई दिल किधर है, जब भी दिल की बात आती है हमारा हाथ अपने हार्ट पर जाता है। मैं दिल से कह रहा हूं, ये दिल नहीं है, ये शरीर का पार्ट है। दिल उसको कहते हैं आत्मा की वो शक्ति जो प्यार को एक्सप्रेस करती है, वो हमारी बुद्धि है। इसलिए बाबा कहते हैं कौरव जो हैं वो विपरीत बुद्धि थे, उनकी प्रीत भगवान के साथ नहीं थी, और पांडवों की बुद्धि प्रीत बुद्धि थी, उनका प्यार भगवान के साथ था। इसलिए कहते हाथ काटे दिल याड़े, हाथ से काम करना है और दिल से अर्थात बुद्धि से बाबा को याद करना है। और पांचवा काम है दिमाग। कहते हैं ना भाई तुम्हारा दिमाग कहाँ है, नमक के जगह चीनी डाल दिया सब्जी में, दिमाग किधर है? तो दिमाग का भी काम बुद्धि ही करती है। इस प्रकार से पांच काम बुद्धि करती है। इसलिए कहते हैं जैसे बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है, जैसी आत्मा की शुद्धि वैसे खजानों की वृद्धि होती है, जैसे खजानों की वृद्धि होती है वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। जो भी बाबा के गुण हैं, शक्तियां हैं, विशेषताएं हैं, वो आत्मा में स्वतः ही भरने लगती हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माएं बनती जाती हैं। तो इसलिए सारा मदार बुद्धि पर है। तीसरी बात ध्यान से सुनना, कहते हैं मन को कोई भी आज तक अपने कंट्रोल में नहीं कर सका। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मन मेरा है और मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा तो और किसके कंट्रोल में रहेगा? लेकिन उसके लिए मन और बुद्धि का रिलेशन संबंध हमें जानना जरूरी है। बुद्धि मन को कंट्रोल करने का अभ्यास नहीं करना है, बुद्धि को कंट्रोल करना है, क्योंकि बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का प्लानर है। होल एंड सोल बुद्धि है, मन केवल उसका फॉलोअर है, जहां बुद्धि जाती है वहां मन ऑटोमेटिक पूंछ की तरह भागता है। इसलिए हमें मन को कंट्रोल नहीं करना है, बुद्धि को अपने नियंत्रण में करना है। तो मन हमारे नियंत्रण में रहेगा। बुद्धि को कंट्रोल में करना अर्थात बुद्धि को किसी न किसी लक्ष्य पर केंद्रित करना। जब बुद्धि किसी बात पर एकाग्र होती है, जुड़ जाती है, तो मन ऑटोमेटिक उसके प्रति ही सोचता रहेगा। बाबा पर अगर एकाग्र बुद्धि है तो मन बाबा के बारे में ही सोचता रहेगा। चौथी बात, इन दोनों शक्तियों को योगाभ्यास में कैसे प्रयोग में लाएं? जब भी हम योग में बैठते हैं आत्मिक स्थिति में हमें स्थित होना है और सीधा बुद्धि रूपी नेत्र परम धाम में शिव बाबा पर या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा पर एकाग्र करना है। बुद्धि से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। जैसे कनेक्शन जुड़ जाता है शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होता है। इसलिए बुद्धि से बाबा को देखते रहें और मन से बाबा के बारे में सोचते रहें। तो अगर योगाभ्यास में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, उसका गुह्य राज क्या है? कई बार हम देखते हैं बाबा के रूम में बैठे हैं, दो मिनट के लिए योग लगता है, बाद में टूट जाता है। फिर टूटा हुआ कनेक्शन एक सेकंड में प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी क्या टेक्निक है? सिंपल टेक्निक है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि को चेक करो, कहीं वो बाबा पर नहीं कहीं और भटक रहा है। चेक करो और उसको चेंज करो, बाबा पर बिठा दो, एक सेकंड में आपको कनेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि बजाओ अच्छी तरह से, बजाओ ना जरा ताली। क्योंकि आगे चलकर हमारी बुद्धि को डिस्ट्रैक्ट करने वाली, भ्रमित करने वाली कई बातें आएगी, और ऐसे माहौल में हमें एक सेकंड में बाबा से कनेक्शन जोड़ना होगा। इसलिए लंबे समय का ये अभ्यास हमको जारी रखना है। बुद्धि पर हमारी नियंत्रण और अनुशासन करने की शक्ति को बढ़ाते जाना है। इसलिए योगियों की आंखें हमेशा आधी खुली दिखाते हैं, पूरी खुली भी नहीं, पूरी बंद भी नहीं दिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा जब कर्मातीत स्थिति की अनुभूति करते थे तो बाबा की आंखों से स्पष्ट दिखाई देता था, बाबा केवल तन से यहाँ बैठे हैं, मन से पूर्णतया परम धाम में बाबा के बाजू में बैठे हैं, पास में बैठे हैं, उनकी आंखें बोलती थी। इसलिए बुद्धि रूपी नेत्र से हम बाबा को देखते रहेंगे तो बाबा से कनेक्शन जुटा हुआ रहेगा। और पांचवी बात है, इन दोनों शक्तियों को सदा दुश्मन माया से सेफ रखने के लिए एक युक्ति को अपनाना है। ये राज हमारा नहीं है, ये दुश्मन का राज, रावण का राज है। रावण राज क्यों कहते हैं? राव प्लस ना, मेरे राज में कोई भी राव अर्थात राजा नहीं बन सकता है, सबको रंक बनकर, गुलाम बनकर रहना होगा, ये रावण कहता है। अरे ये माया की दुनिया है, लेकिन बाबा हमें मिला हुआ है, इसलिए हम राजा बन के रहेंगे, तुम्हारा गुलाम बन के हम नहीं रहने वाले हैं। इसलिए हमें अपनी मस्ती में मस्त रहना है। तो बुद्धि को सदा सेफ रखने के लिए बहुत सुंदर युक्ति को अपनाना है। बाबा के सेंटर पर जब जाते हैं, मुरली और योग का अभ्यास करते हैं, ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है, तो ईश्वरीय नशे का कवच सारे दिन भर में हमें पहनकर रखना है। जब ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर रखेंगे तो दुनिया का नशा हमारे पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वरीय नशा चढ़ा हुआ है तो दुनियावी नशा कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, बाबा की याद में चुस्ती में चुस्त रहते हैं और कमाई करते रहते हैं। इसलिए ईश्वरीय नशे का कवच हमको सारे दिन भर में पहनकर रखना है। तो इन पांच बातों को अच्छी तरह से आप समझेंगे, प्रैक्टिकल में लाएंगे, तो बहुत अच्छी तरह से आपका योगाभ्यास बढ़ता जाएगा। कई बार हमारे मन में संकल्प आता है कभी कभी कि पता नहीं बाबा कितना दूर है, परम धाम में कितने कौन से कोने में बैठा है, मैं तो नया बच्चा हूँ बाबा का, नई बच्ची हूँ, दो पांच साल का बच्चा हूँ, पता नहीं मेरी याद बाबा तक पहुँचती है या नहीं, ये डाउट आता है। तो पता नहीं करते करते वो पता भी उनका कट जाता है, चले भी जाते हैं। कभी कभी आपके मन में संशय आता है, सच बोलिए, आता है भाई संशय आता है, बाबा तक मेरी याद पहुंचती है या नहीं, कभी संशय आता है, बोलो ना, आता है ना। देखो सही बोल रहे हैं बहन जी, मेरे मन में भी ये संशय आता था दो तीन साल तक, लेकिन जब मैं मधुबन में आया 76 में, ये पांच बातें मन बुद्धि के बारे में आपके साथ शेयर की, उसके बाद एक साल तक मैंने योग का चार्ट रखा, उसके बाद बाबा के साथ पर्सनल मुलाकात करने का मौका मिला, तो बाबा ने मुझे वरदान दिया, आपका योग का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडवों में आगे है, इतना बड़ा वरदान बाबा ने मुझे दिया। उस वरदान की खुशी तो मुझे हुई, लेकिन उससे बढ़कर चढ़कर खुशी क्यों हुई, क्योंकि जिसको मैं याद कर रहा हूं वो खुद ही कह रहे हैं योग का चार्ट अच्छा है, माना मेरी याद बाबा तक पहुंचती थी, उसका कंफर्मेशन मुझे मिल गया, वो बहुत उसकी खुशी मुझे हुई। अभी एक बात आपको बताते हैं, इस सारा संसार एक ही सिद्धांत पर टिका हुआ है, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम यहाँ बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक संकल्प करते हैं, उसका प्रभाव उस पर जरूर पड़ता है। छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ, दो मास की बच्ची इस माताजी के गोदी में है, वो खूब रो रही है, और दो मास की बच्ची इनकी गोदी में है, दूसरी माता की गोदी में, वो खुशी में झूम रही है, झूमती जा रही है। भाई कारण क्या है, वो क्यों रो रही है, क्यों ये खुशी में झूम रही है, क्योंकि जहां से ये आत्मा शरीर छोड़कर आई है वहां की आत्माएं बहुत दुखी हो रहे, रड़िया मार रहे, अशांत हो रहे हैं, वो सारी निगेटिव एनर्जी इस आत्मा तक पहुंच रही है, इसलिए बहुत वो रो रही है। लेकिन ये आत्मा जहां से शरीर छोड़कर आई है वहां के संबंधी शांति का दान दे रहे हैं, शक्ति का दान दे रहे हैं, बाबा के घर में जाके भोग लगा रहे हैं, अनेक आत्माओं को वो ब्रह्मा भोजन की दुआएं भी उनको मिल रही हैं, तो सकारात्मक एनर्जी यहाँ पहुंच रही है, इसलिए वो खुशी में झूम रही हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। उससे भी बढ़कर आप देखेंगे, बांधेली माताएं जो होती हैं, उनको बच्चे डांटते हैं, पति मारता है, और वो तड़प तड़प के बाबा को याद करती है, भगवान देख मेरे तरफ, मैं कितना सितम सहन कर रही हूँ, तो उसकी तड़पने वाली याद बाबा तक पहुंचती है, बाबा की आंखों में आंसू आते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्ची को शक्ति एक्स्ट्रा देते हैं, प्यार देते हैं, ताकि उसको वो सहन कर सके। लेकिन बाबा कहते हैं बांधेली माताएं सतयुग में ऊंच पद पाती हैं, क्योंकि उनकी याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा बहुत होती है, तो भगवान तक पहुंचती है, और भगवान भी उसका रिस्पांस इसी रूप से देते हैं। हमें ध्यान रखना है, याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा बढ़ती रहे तो हमें योगाभ्यास में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, शक्तियां मिलेगी, सिद्धियां मिलेगी, प्राप्तियां होती जाएगी। तो इस पर हमें ध्यान देना है। अभी कभी कभी हम क्या करते हैं, जब कोई अपना महत्वपूर्ण काम होता है तो बाबा के रूम में जाते हैं, बाबा को मनाने लगते हैं, बाबा मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ, मैं आपका बाबा, मेरा एक काम करवा दो ना बाबा, मतलब से बाबा के रूम में जाते हैं। तो हमें दिल से बाबा को याद करना है, तो दिल की याद बाबा के दिल तक पहुंचती है। तो इसलिए बहुत इस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि जिससे प्यार होता है, आप देखो प्यार भी दुनिया में किससे होता है, जिससे प्राप्तियां बहुत होती है। अब बाबा से बढ़कर इस संसार में प्राप्तियां कराने वाला कोई है ही नहीं। बाबा कहते मेरे पास इतने खजाने हैं, इतने खजाने सारी संसार की आत्माओं को बांट दो तो भी वो कूटते नहीं, मैं क्या करूं इन खजानों को, ये सारे खजाने तो आपके लिए है, इतना खजाने उसके पास, बाबा के पास है। प्यार करना चाहिए ना, आप देखो दुनिया में भी प्यार किससे लोग करते हैं, जिसके पास बहुत माल होता है, खजाने होते हैं, उसी से प्यार करते हैं। अब बाबा से बढ़कर किसी के पास खजाने हैं क्या? तो इसलिए बाबा से ही हमें प्यार करना है। तो प्राप्ति से प्यार ऑटोमेटिक हमें होता है। आप देखेंगे कि बाबा इतना बड़ा लड्डू दे रहा है जो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है। 21 जन्मों की बादशाही दुनिया में कोई है जो देख सकता है? उसको तो छोड़ो, वो भविष्य की बात है, वर्तमान समय इतने खजाने दे रहे हैं, इतनी शक्तियां दे रहे हैं, ऐसे खजाने बांटने वाला निष्काम सेवाधारी कोई भी नहीं है, केवल एक हमारा बाबा है। इसलिए बाबा से दिल से हमें प्यार करना है। जो बहुत प्यारी वस्तु होती है वो आंखों में बसती है। मीरा का प्यार कन्हैया के साथ था, कहती थी जहां देखो कन्हैया ही कन्हैया नजर आता है, कन्हैया सब में कण कण में नहीं था, उसकी आंखों में बसा था। तो हमें भी जैसे वो कृष्णमय बन चुकी थी, हमें शिवमय बन जाना है। जहां देखो बाबा ही बाबा हमें नजर आए, हमारी नजरों में बाबा समा जाए, तो दुनिया के नजारे हमें आकर्षित नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्यार जिगरी हमारा बाबा से हो। अभी एक बात मैं आपको बताता हूं, सीक्रेट बताता हूं, परमात्मा मिलन का आनंद आपको भरपूर लेना है। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया, समान के सिंहासन पर बैठकर ही एंट्री करना है और खुशी में मस्ती में झूमना है। और जैसे बाबा दादी के तन में आते हैं, पहले से ही आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। और जैसे बाबा की दृष्टि आप पर पड़ती है, पावरफुल करंट उसी समय बाबा की दृष्टि से हमें आत्मा में भरना है। और दूसरी तरफ कुछ कमी बाबा को देना है तो कमी भी बाबा को उसी समय देना है, क्योंकि बाबा की दृष्टि पड़ना माना आई कांटेक्ट होते ही करंट आपकी आत्मा में आना शुरू होता है। और पूरा समय बाबा को देखते रहे, भगवान कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे बच्चों से मिल रहे हैं, ऐसे भगवान की लीलाएं देखते रहना। तो उससे क्या होगा, आप जब अपने सेवा केंद्र पर जाएंगे तो ये बातें आपको योगाभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगी। इसलिए बड़े मस्ती से आपको परमात्मा मिलन का आनंद लेना है। और शिवरात्रि ये विशेष ओकेजन होता है, ऐसे समय पर आप महान विभूतियां यहाँ पहुंची हैं, इसलिए वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली है, इसका मिलन का आनंद आप बहुत ले सकते हैं। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत अच्छी बाबा की याद करेंगे, योग की अनुभूति करेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं अनुभूति ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। हमारे पास अनुभव का खजाना होना चाहिए। अनुभव अर्थात जब तक स्वयं को अनु नहीं समझते हैं, बिनु नहीं, बिंदु नहीं समझते हैं, कोई भी अलौकिक अनुभूति इस ज्ञान मार्ग में नहीं होगी। अनु समझते ही अलौकिक अनुभव की खान आपको मिल जाएगी, अलौकिक अनुभव की वर्षा आप पर होती जाएगी और आप माला माल अनुभव करेंगे। इसलिए स्वयं को अनु अर्थात बिंदु और स्टार स्टार समझना है और बहुत अच्छी तरह से योग का आनंद हमें लेना है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। और सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, कॉपी पेन डायरी सब हटा दो, एकदम मस्ती में खो जाओ। चंद घड़ियों के लिए हम बाबा की याद में डूब जाएंगे, समा जाएंगे, खो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी विदेही स्थिति की तपस्या में मगन हूँ। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ, दमकता हुआ दिव्य सितारा। यह शरीर तो मेरा मकान है, यह शरीर तो मुझ आत्मा का साधन है, यह शरीर तो मुझ आत्मा का वस्त्र है, मेरा सत्य स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य को चमका दिया है। क्या कहने मेरे भाग्य का, इस साकारी शरीर में साकारी दुनिया में रहते हुए मैं प्यारे बाबा को अपनी दुनिया अनुभव कर रहा हूँ। संसार में रहते हुए बाबा ही मेरा संसार है। ऐसा अनुभव हो रहा है। मैं निरा निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी, इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा से न्यारी होकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ता जा रहा हूं। उड़ता ही जा रहा हूं। मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य स्वरूपी प्रकाश प्रकाश है। मौसम निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की सुंदर ड्रेस है यह। ओहो फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाप दादा, मोस फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति पुनः बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो निराकारी दुनिया में पहुंच गई हो, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन, प्यारा परम धाम। ओहो मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणों से भी प्यारे, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल। मोज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है, मैं आत्म ज्योति, भाव के सुंदर स्वरूप को दिव्य नेत्र से निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम, बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है, बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है, शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। वारे में वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर शिव पिता से महा मिलन का आनंद लूट रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा, बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से उड़ती हुई वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूं और पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में मैं आत्मा भ्रुकुटी के काल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। महज शक्तिशाली आत्मा ज्योति से शक्तियों की किरणें सारे विश्व में फैल रही, वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे भ्रुकुटी में मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक चारों फैल रही है। ओम शांति शांति शांति।